शांति दीदियां हैं, परंतु उस समय एक को ही हम दीदी कहते थे, दीदी मनमोहिनी। कौन है जिसने दीदी को देखा? बाबा के पुराने पुराने बच्चे यहां हैं जी। तो अब भूख लगाते समय दीदी की याद आई तो बाबा के सामने दीदी किस तरह से बहुत प्यार से घूमती थी। और आज बाबा ने कहा कि बस एक, तो मेरे मन में प्रश्न आया कि क्या जो इतनी पालना देने वाले हैं उन्हों की याद आती है तो उस बात को कहां फिट करे। तो यही ख्याल आया कि उन्हों का भी एक ही मंत्र होता था कि एक शुभ बाबा को याद करो। तो जब उन्हों की याद आती है तब कब, तो फिर उन्हों की जो बातें हैं वो याद आती तो दीदी का सदा एक ही कहना होता था, एक बल एक भरोसा। और दूसरा दीदी का मंत्र था, अब घर चलना है। जो दीदी को जानते हैं उन्हों को याद है कि अंतिम पूरा ही वर्ष, न सिर्फ एक मास परंतु पूरा ही एक अंतिम वर्ष दीदी के मुख से हम यही सुनते थे, बस घर चलना है, अब घर चलना है। तो दीदी अपनी तैयारी इस प्रकार से कर रही थी। तो आज बाबा ने कहा महातपस्या है एक की याद, तो एक बल एक भरोसा एक की याद, तो उसी को ही कहेंगे महान तपस्वी। और वैसे कहा जाता है त्याग तपस्या सेवा, तो आज बाबा ने त्याग शब्द को तो उड़ा लिया। क्या त्याग किया? भाग्य प्राप्त हुआ, कुछ दिया नहीं, कुछ छोड़ा। छोड़ा नहीं और ही बहुत बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ। किसको लगता है कि बाबा का बनने से बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त हो गया? मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि बाबा के सब बच्चे ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि देखते हैं बाहर के संसार में क्या हो रहा और हमारे जीवन में कितनी प्राप्ति है, तो कितना बड़ा भाग्य मिला है जिसके भेद में तो कुछ छोड़ा तो है ही नहीं। और भाग्य विदाता, उसकी याद जब आती तो भाग्य विदाता के हिसाब से बाबा ने हमें कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं दी है। और विशेष आज के मुरली में वरदान भी बहुत बहुत दिए, परंतु साथ साथ काम भी दिया है। जब सपूत बच्चे होते हैं तो उन्हों को सिर्फ प्यार नहीं दिया जाता, उन्हों को योग्य बनाते हैं ताकि वो कुछ काम करे। बच्चा बड़ा हो और कुछ काम न करे तो फिर सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। तो भगवान भी अपने सपूत बच्चे जब कुछ मैच्योरिटी में आते हैं तो भगवान भी समझाते हैं अभी कुछ काम करो। तो कौन सा काम करना है? फरिश्ता बनकर सारे विश्व को जो कुछ मिला है उन्हों को देने का। देते जाओ देते जाओ देते जाओ, आज का ये मंत्र था। कुछ लेना नहीं है, लेने की आश मत रखो, परंतु देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जैसे आपका बाप, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं ना कि क्या करना होता। जो माँ काम करती है बच्चे उसकी कॉपी करते हैं, जो बाप को देखते हैं उसकी कॉपी करते हैं। तो जो हमारा माता पिता है वो देता ही देता देता ही देता है। सर्व खजाने से भरपूर भगवान बच्चों को भी पूरा ही भरपूर बनाकर फिर उन्हों को भी कहता है अब आप देते जाओ देते जाओ। तो वैसे तो ज्यादातर यहाँ जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, घर में रहने वाले, गृहस्थ को संभालने वाले, और जो सेंटर्स पर भी रहते हैं उसको कम गृहस्थी कहेंगे। बाबू भाई, पहले तो दो बच्चों का सोचना होता था, अभी पहले तो भंडारे में चार का भोजन बनता था, अब 400 का भोजन कितने बारी बनता बनता ही रहता बनता ही रहता। तो बाबा ने एक बारी कहा था कि गृहस्थी योगी कैसे बन सकते, गृहस्थियों को तो अपनी गृहस्थी ही याद आएंगी। तो योगी बनने के लिए बीच में कदम आता है स्टूडेंट। गृहस्थी जब स्टूडेंट लाइफ में आए तो फिर योगी बने, और जब योगी बनते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप एंजल, फरिश्ता। आज बाबा ने एक तो फरिश्ता बनने का लक्ष्य दिया, और फिर फरिश्ता होकर कौन सी सेवाएं करनी है वो भी बहुत स्पष्ट बताया। तो अब हमें फरिश्ता बनना है। गृहस्थी से स्टूडेंट लाइफ में तो आ गए। मैं समझती सवेरे तो मेजॉरिटी मुरली सुनते ही होंगे, बाकी कुछ थोड़े हैं जो शायद अभी अभी शुरू किया है तो शायद शाम की मुरली सुनते होंगे, परंतु जल्दी में ही सवेरे की मुरली तक पहुंच ही जाएंगे। परंतु कहने का मतलब कि स्टूडेंट बन गए, कोर्स शुरू हुआ तो स्टूडेंट बन गए, और कोर्स पूरा होते ही फिर तो बाबा की मुरली के स्टूडेंट बन गए। तो भगवान आपका टीचर न कि कोई मनुष्य, भगवान की बातें सुनते, भगवान की बातें धारण करते, भगवान के श्रीमत पर चलते वरदान प्राप्त करते। तो आज भगवान का वरदान एंजल्स बनने के लिए, फरिश्ता भव। तो आप सोचो कि जब हम योगी बनते हैं तो बुद्धि एनीवे सब बातों से उपराम। योगी को क्या चाहिए? जितना एक्सपेक्टेशन से बाहर है उतना भगवान ने दे दिया। तो चाहिए चाहिए तो फिनिश, कुछ चाइना रखने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा ही मिल गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अब फिर स्टूडेंट से योगी, योगी तो है ही सेवाधारी, परंतु कर्म योगी। तो कुछ भी कर्म करें, बाबा की याद अथवा योग में रह करके कर्म करें, परंतु उससे भी ऊपर मनसा योगी बने। सेवा हमारी मनसा से हो तो वाचा कर्म ना ऑटोमेटिकली ही उस तरफ चलेंगी। परंतु फरिश्ते के कई प्रकार के लक्षण होते। फरिश्ता बनने के लिए एक तो आज बाबा ने कहा ये पुरानी चट्टी लगी हुई शरीर को छोड़ने का, उसके भान को छोड़ने का, किसको कहां प्लास्टर लगा हुआ है, कहां पट्टी लगी हुई है, कहां कुछ ऑपरेशन किया हुआ है, स्टेंट लगा हुआ है तो कितनी चट्टियां लगी हुई है। परंतु ये मेरा तन है, इसका भान भी छोड़ के जो अपना प्रकाशमय स्वरूप है उसको धारण करे। अब सोचो जब बहुत सुंदर प्रकाशमय चोला मिल रहा है तो हम पुराने को क्यों नहीं छोड़ने चाहते हैं? इसने ममत्व क्यों रखा है? क्योंकि अभी तक पूरी अच्छी तरह से ये बात विश्वास की नहीं है कि वो हमारे लिए चोला बना है। कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो तो आपको विश्वास से कहने में थोड़ी हिचक होंगी, हम तो फरिश्ते हैं, राइट? एक तो वो भी समझेंगे कि पता नहीं इसको क्या हो गया, परंतु हम खुद भी संकोच करेंगे ये शब्द कहने में, क्योंकि अभी तक वो स्थिति नहीं। जिस घड़ी वो स्थिति बन जाती, वो गुण आ जाते, तो फिर कहने में जरूरत भी नहीं होगी, फिर तो सभी अनुभव ही करेंगे, तो बोलने की बात नहीं। तो फरिश्ता बनने के लिए एक तो इस पुरानी देह से जो हमारा ममत्व बना हुआ है उसको तोड़ना होगा, फिर वो प्रकाश स्वरूप चोला हम धारण कर सकेंगे। उसका मतलब बाबा ने कहा भगवान के प्यार से तीन मंजिल को पार करना, याद है ना? देह, इसका भान, फिर देह के संबंध, और तीसरा फिर देह के पदार्थ, कोई भी बात का आकर्षण न हो। तीन मंजिल, बस तीन स्टेप्स में पार चले जाएंगे। तो पहले तो इसका भान छोड़े, फिर दूसरा, हमेशा बाबा कहते हैं कि फरिश्ता वो बन सकता जिसका सर्व रिश्ता एक के साथ। तो फिर सेकंड मंजिल को पार करें। और आज बाबा का कहना है कि कोई तरफ भी आकर्षण न हो, कोई चीज के लिए भी मेरा बुद्धि में न आए। मेरा जॉब, घर छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, खिलौने छोड़ो, कंप्यूटर, फोन, ये सब खिलौने में आ जाता, तो इन सब से बुद्धि योग निकल जाए, मेरा मेरा छूट जाए, परंतु अपनी बुद्धि का अहंकार भी छूट जाए। मेरी बुद्धि, मेरी आइडिया, मेरे संस्कार, ये सब भी मेरे मेरे में आ जाते, इन सब को छूटे, इन सब से छूटे तो फिर हम फरिश्ता बन सकते। परंतु न्यारापन, देह से भी न्यारा, संबंध से भी न्यारा। और राजबाबा ने एक दूसरा शब्द कहा, साक्षी। जब अपनी साक्षी स्थिति होती तो उसमें विशेषता ये होती कि जो कुछ हो रहा है साक्षी है, वो देखते भी उसका हमारे ऊपर असर न हो। यदि कहां पर दुख की फीलिंग आती, कहां पर जोश की फीलिंग आई, कहां पर मोह की रग जाती, कोई भी बात में, किस भी प्रकार से हमारे स्थिति में कुछ भावनाएं हमारी बदल जाए, तो फिर वहां हम अटक गए। तो उस स्थिति को फरिश्ता स्थिति नहीं कहेंगे, परंतु पुराना देह छूट गया, रिश्ता सब यहां से छूटकर एक के साथ रिश्ता बन गया। तो फिर ये तीसरी बात, हर बात से हम न्यारा होकर के, साक्षी होकर के देखें, फिर सब बातों से उपराम। तो कोई सीन हम देखते हैं तो क्या उस समय हम एक्टर है या उस समय हम साक्षी है? प्रैक्टिकल। इसने कुछ कहा तो तुरंत मेरे मन में उत्तर तैयार हुआ, उसको ये मुझे उत्तर देना है। तो उस समय हम साक्षी नहीं है। किसने कुछ कहा और मेरा रिएक्शन शुरू हो गया, चाहे मुख से कहा या नहीं कहा, परंतु चेहरे ने तो बता दिया, आंखों ने बता दिया, तो फिर उस समय ये हम नहीं कह सकते हैं साक्षी। तो जब बुद्धि के अंदर फुल स्टॉप आ जाए, एक घड़ी, आधी घड़ी, बस एक सेकंड, आधे सेकंड में फुल स्टॉप, तो फिर जो हम अपने संस्कारों के कारण कुछ रिएक्ट करते, कुछ पुरानी आदत के कारण रिएक्शन होता, जो कुछ भी है हम साक्षी होकर के देख रहे हैं तो हमारा रिएक्शन नहीं होता। तो पुरानी बातों का जो आकर्षण होता है या जो महाजाल होती है, आकर्षण कहो या जाल कहो, परंतु हम अच्छी तरह से उसमें लिप्त होते और देख रहे हैं कि इसका पुराना रिएक्शन है और हमें पता नहीं चलता, बाद में पता चलता, जब कुछ गड़बड़ हो जाती फिर हम सोचते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, तो फिर पता चलता, परंतु उससे भी उपराम। साक्षी फिर उपराम। उपराम में फुल स्टॉप लगाने की भी जरूरत नहीं है, साक्षी बनने के लिए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, साक्षी होकर के देखो, फिर जो कुछ करना है करो, परंतु उपराम है नो रिएक्शन। फिर उस ऊपर वाली स्थिति में जो बाबा ने कहा कि उस सीट पर सेट होंगे तो फिर आपकी सेवा चालू हो सकेंगी। फिर उस उपराम की स्थिति में औरों को हम सकाश दे सकेंगे। सबसे इनकॉग्निटो सेवा है मनसा सेवा, सकाश देने की सेवा। किसको ज्ञान सुनाया उसके चेहरे से पता चलता उनको पसंद आ रहा है या नहीं, पसंद आएगा तो खुद को उमंग आएगा और सुनाए और सुनाए, दो घंटा भी बीत जाएगा जो कि एक घंटे का कोर्स होना चाहिए, परंतु कहेंगे इतना अच्छा स्टूडेंट था तो बहुत मजा आ रहा था उसको सुनाने में, तो रिस्पॉन्स तुरंत मिलता। किसको राय सलाह दी उसको पसंद आई, उसका उलझन दूर हो गया, वो भी तुरंत उसका फल नजर आता। मनसा सेवा में हाँ ये आत्मा को संतुष्टता होती कि बाबा ने जो काम दिया वो मैंने किया, बाबा कहाँ लेके गए, कौन सी सेवा हुई मालूम नहीं, बिल्कुल गुप्त। बाबा जानता, ड्रामा जानता। जिस आत्मा की सेवा हुई, जरूरी नहीं है कि उन्हों को भी पता पड़ेगा कि क्यों मेरे मन में शांति आई, उन्हों को मालूम नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए योग लगाया, सकाश दिया। हाँ उन्हों को ये फीलिंग जरूर आएंगी कि भगवान ने मुझे मदद की। जिस घड़ी मैं बहुत परेशान था, उस घड़ी मुझे भगवान की शक्ति मिली, उन्हों को मालूम पड़ेगा और उन्हों का संबंध भगवान के साथ और मजबूत होगा। बस और क्या चाहिए। ब्राह्मणों का काम होता है सगाई कराना, राइट? तो उस आत्मा की सगाई हमने बाप के साथ कर ली, कमीशन हमको ब्लेसिंग्स की मिल गई, बस हमारा काम फिनिश। कुछ और हमको सोचने की जरूरत नहीं। परंतु बाबा कहते हैं कि अभी इस स्थिति की जरूरत है और इस सेवा की जरूरत है। तो मैं सोचती थी कि ये मुरलियां अभी 83 के दिसंबर की चल रही है, तो 83 दिसंबर में संसार में इतनी कोई बुराइयां नहीं थी। कई यहां बैठे हैं मेरे आयु वाले, उनको 83 की बातें याद होंगी, कई उससे बहुत छोटे हैं, उनको नहीं याद होंगी। परंतु 83 का जो वातावरण था अच्छा था, बहुत बुरा नहीं था। और आज के संसार का वातावरण हम कहेंगे बिल्कुल घोर अंधेरा आ गया, बिल्कुल अंधेरी रात आ गई। क्या क्या हो रहा है, सत्यता का तो नाम निशान ही गुम हो गया, पोस्ट ट्रूथ की एरा में आ गए, फेक न्यूज चल रहा है। अब कुछ समाचार आता है, हम सोचते हैं ये सच है या झूठ है, कैसे चेक करें, कोशिश करते हैं कहां से पता चले। तो उस समय कभी ऐसे नहीं सोचा था कि फेक न्यूज भी होगा कभी। तो बहुत संसार में फर्क आ गया। और आज बाबा ने जो कहा, मानसिक बीमारियां, मानसिक कमजोरियां, तो वो भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बहुत क्लियर पिक्चर है बाबा के पास। क्यों? क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी। बाबा हम लोगों को भी सुनाते हैं, परंतु कब कब, वैसे तो बुद्धि मानती है कि जो बाबा कह रहा है वो सच्ची बात है, परंतु जब बाबा हमको ये सब बातें बताते हैं साकार मुरली में कि ऐसे समय ऐसा संसार आएगा, हम सोचते हैं हाँ कोई समय आएगा। परंतु आज मैं तो आज सोचती हूँ कि अब वो समय आ गया, आएगा नहीं, आ गया है। तो स्थिति कब बनानी है? स्थिति अब बनानी है। और बाबा ने नयों को बहुत अच्छा वरदान दे दिया आज, बस एक की याद और आप आगे बढ़ते जाएंगे। साइड सीन को नहीं देखो, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वो लक्ष्य सामने रखो, तो आगे बढ़ते चलेंगे। परंतु आज का आया हुआ भी अपनी फरिश्ता स्वरूप को धारण कर सकता। सारी बात है निश्चय की। जिसको निश्चय है कि मैं ब्राह्मण हूं, जिसको निश्चय है कि वो ही बाबा मिला है, जिसको निश्चय है कि संगम युग है, जिसको निश्चय है कि बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया है विश्व सेवा के लिए, जिसको विश्वास है, निश्चय है, एक कलक पहले ही हम ही फरिश्ते बने थे। तो बस उस बात को बुद्धि में रखो, उस लक्ष्य को सामने रखो। तो जल्दी जल्दी न्यारा भी बनेंगे, डिटैच भी हो जाएंगे, साक्षी भी होंगे और फिर उपराम भी रहेंगे। तो अब जो समय है यहाँ नीचे रह के सेवा करने का नहीं, परंतु ऊपर की स्थिति बना करके बाबा के साथ रह करके विश्व को इन सब बातों का दान देना। जो खजाना बाबा से मिला हुआ है उसका दान देंगे तो फिर उनको विश्वास होगा कि हाँ ये भगवान का कार्य है। क्यों? क्योंकि स्पीकर्स बहुत है, ज्यादा ही हो गए हैं और सब बहुत होशियार है और एंटरटेनिंग भी है, परंतु अनुभव कराने वाले कम है। तो जो अनुभव हम कर रहे हैं बाबा के द्वारा, तो आत्मा अपने में वो अनुभव भरती जाए, वो गुणों से संपन्न होती जाए, फिर वो औरों को सकाश में बाबा की याद द्वारा पहुंचा सकते, ताकि उन्हों को भी अनुभव हो, फिर वो मानेंगे कि हाँ ये सत्य ज्ञान है, शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। तो आप सोचो कि कहाँ तक हम इस सीक्वेंस में पहुंचे हैं, देह से न्यारा, जबकि इतने हजारों वर्ष से हमने कभी ये बात प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अब तुरंत प्रैक्टिस शुरू भी करें तो भी इतनी जल्दी वो स्थिति जमती नहीं है, क्योंकि पुरानी आदत शरीर की बुद्धि को नीचे ले आती। तो आप सोचो कितना ध्यान रखना होगा इससे न्यारा होकर के उस स्थिति को प्राप्त करना। और फिर कितना भी बाबा ने हमें आज बताया कि आप सोचो, बाबा की भाषा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, विनाशी संबंधियों से आपको क्या मिला। बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा थी, परंतु फिर भी आदत बुद्धि वहां जाती। जिस खरी कोई बात होती फर्स्ट किसकी याद आती? माँ बाप काका चाचा मामा, फलाना मुझे मदद करेगा, कौन याद आता? या हर बात में एक बल, एक भरोसा, बाबा की याद। मालूम है कि बाबा के द्वारा ही जो कुछ मुझे इस घड़ी चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, सिचुएशन ऐसे है जो पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, सर्वशक्तिवान से संबंध है, तो तुरंत बाबा बुद्धि को टच करेगा कि ये क्या हो रहा है, उसकी गहराई क्या है, उस बात को हम समझ करके परख करके फिर हम निर्णय ले सकेंगे। संबंधियों के पास बुद्धि भागे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कहेंगे मुझे और कोई पाथरी चाहिए, वो तो बहुत अनुभवी है, हमें उनसे अच्छी राय मिलती है। हाँ, ज्ञान से पहले शायद वो लौकिक हिसाब से अच्छी राय आपको देते होंगे, ज्ञान के बाद वो हमको अच्छी राय देंगे या बाबा मुझे अच्छी राय देंगे? और राय देने में भी कैसे बाबा राय देते? बुद्धि में अपने आप ही टच कर ले और आप बाद में कहो आज अमृत वेले बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बाबा ने मेरी बुद्धि को टच किया। तो दादी कहेंगे बस आपके ही बुद्धि को बाबा टच किया, और किसके बुद्धि को बाबा नहीं टच करते? बाबा को तो एक से नहीं कार्य कराना है, बाबा को तो सारे परिवार से कार्य कराना है, तो एक की टचिंग की बात नहीं हो सकती। तो बाबा कैसे हमें राय देते? मुरली द्वारा। हाँ, जब कोई पर्सनल सिचुएशन सामने है और उस घड़ी हम बाबा को याद करते तो टचिंग कौन सी आती? बिल्कुल क्लियर बात याद आती, बाबा ने मुरली में क्या बताया है, और उससे हमें पता चलता कि अब मुझे क्या करना है। भगवान कान में आवाज दे रहा या माया कान में आवाज दे रही, मेरे संस्कारों में कान में कुछ आ रहा मालूम नहीं पड़ता, परंतु मुरली द्वारा बाबा ने स्पष्ट बता दिया। तो देह के संबंध में अनेकों की राय, एक के साथ संबंध होने से जो उस समय हमें याद आना चाहिए वो बात याद आएंगी और उस अनुसार वो बात ठीक भी हो जाएंगी। अब सोचो जब कठिन समय आता है दो बातें मोस्टली होती है, एक तो कंफ्यूजन, क्या करें कैसे करें, बुद्धि घबरावट में आ जाती, और फिर दूसरी बात क्या होती, डर आ जाता, पता नहीं अभी क्या होने वाला है, तो बुद्धि में बहुत सारी हलचल आ जाती। और यदि पहले से ही हमने रिहर्सल की हुई होंगी, फुल स्टॉप लगा लीजिए, कोई भी बात हो फुल स्टॉप, छोटी बात हो फुल स्टॉप, यदि वो हमारा अभ्यास चालू होगा तो उस घड़ी फुल स्टॉप, बुद्धि क्लियर, और जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट मदद करने वाली होंगी, बाबा ने मुरली में क्या बताया वो बात याद आएंगी, और उस अनुसार जो हम कदम उठाएंगे वो जरूर राइट होगा, उसमें बाबा की मदद मिलेंगी, हमारी रक्षा होंगी, और जो भी हमारे साथी है उन्हों की भी सेम रक्षा होती रहेंगी। एक ही रक्षा नहीं, परंतु जो हमारे साथी है बाबा उन्हों की भी रक्षा करेंगे। तो देह के संबंध को उस समय याद करना, फिर वो कनेक्शन टूट जाता। और यदि तीसरी मंजो, यदि मुझे अपनी बुद्धि का नशा होगा, अपने योग का, अपनी धारणा का नशा होगा, तो उस समय भी हमारी बुद्धि को ये समझ में नहीं आएगा कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि हम अपने को ही राइट मान करके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं इस तरफ से बात को देख रही हूं तो इस तरफ से अनुसार बात राइट है, परंतु इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से मुझे वो देखने को नहीं आता, क्योंकि मैं अपने को इस तरफ ही राइट मान रही हूं। ऊपर की स्थिति बना लो, उस ऊपर की स्थिति में फिर अच्छी तरह से देखने में आएगा, और फिर किस बात में हम फंस नहीं जाएंगे, और उस समय फिर जो राइट बात है वो हम कर पाएंगे। तो एक तरफ तो बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा है फरिश्ता बनने के लिए, औरों की रक्षा के लिए, परंतु मुझे लगता है कि फरिश्ता स्थिति धारण करने के बगैर हम अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, औरों की तो ठीक है पीछे, परंतु पहले तो हम खुद अपनी स्थिति को संभालें, और मेरी स्थिति द्वारा जहां मुझे बैठना है, जहां मुझे चलना है, किस तरफ मुझे जाना है, वो बाबा का इशारा मैं समझ सक करके फिर उस अनुसार करूं, तो वो होंगी अपनी रक्षा। नहीं तो कई कहते हैं कि बाबा ने क्यों नहीं मेरी मदद की, मेरा कनेक्शन जुटा हुआ था यहां, तो बाबा कैसे मदद करेगा। या कोई कहते हैं कि ये बात हो गई, बाबा कहां गया, बाबा ने क्यों नहीं रक्षा की, परंतु मेरी बुद्धि में ये बात आई मुझे यहां जाना है, बाबा मुझे कुछ और इशारा देना चाहता, मैं उस समय पकड़ नहीं पाई या डर के मारे उस समय कंफ्यूजन में ही मैं रह गई, तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सब बातें हैं अभी के अभ्यास की, अभी के तैयारियां की। तो जितना जितना हम खुद अपनी तैयारियां अभी करते चलेंगे, तो आगे का समय जैसे और नाजुक होता जा रहा, उसमें खुद और साथ साथ विश्व सबको सुख शांति की प्राप्ति होती रहेगी। और आजकल कई बारी मैं ये सोचती हूँ कि ये हम थोड़ा अपनी चेकिंग करके देख लेंगे, ओम शांति का मंत्र है, मालूम है, परंतु कहाँ तक उस स्थिति में मैं अपने को रख सकती हूँ? कौन सी बात है जिस कारण से मेरी बुद्धि में हलचल होती, क्या बात आती है जो मन अशांत हो जाता, और फिर उसको ठीक करने में कितना टाइम लगता? क्योंकि लास्ट सब्जेक्ट यही है कि एक सेकंड में शांति, एक सेकंड में बुद्धि बिल्कुल बाबा के साथ जुटी हुई हो। तो हर बात में जब अभी के रिजल्ट देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं, फिर आगे का भी पता चलता है कि मुझे और काम कितना करना है, कितना टाइम लगता बुद्धि को फिर से सेटल होने में, शांति की स्थिति का अनुभव करने में। तो यदि मैं खुद को देखती चलूं, तो फिर मुझे भी पता चलेगा कि मुझे और आगे किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। तो खुद को देखना बिल्कुल आवश्यक, जो बाबा कहते हैं स्व का दर्शन करो, चक्कर को घुमाओ। हाँ, इंटरेस्टिंग है, सत्युग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या हुआ, कलयुग में क्या हुआ, जरूरी है, परंतु आज जिस चक्कर में अभी हम संगम युग में है, इस घड़ी स्वर का दर्शन करें। तो ये जो अपने साथ सच्चाई से खुद को देखने की बात आती है, खुद से सच्चे हैं तो बाबा के साथ भी सच्चे हो सकते। खुद से ही पता नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है, तो बाबा को भी कहेंगे बाबा हम तो ठीक है ना, परंतु ठीक नहीं है। पहले खुद को देखे अच्छी तरह से, तो फिर और आगे का पता चलेगा। तो मुरलियां तो सब बहुत ही सुंदर शक्तिशाली, परंतु हर मुरली आईना है खुद को देखने के लिए। दादी हमेशा कहती थी कि मैं मुरली को इस तरह से सुनती हूँ, बाबा क्या कह रही है मैं क्या कर रही हूँ, तो जो अंतर है वो मिटता जाए, ताकि जो बाबा कह रहा है मेरी स्थिति वो ही दिखाए। जब मैचिंग हो जाती तो फिर कहेंगे बाप समान। थोड़ा समय पहले ही बाबा ने दादियों को बहुत अच्छी बात कही थी, बाबा आपको देखते हैं बाप समान स्थिति में, क्योंकि आप बाबा का कार्य उसी स्थिति द्वारा संभाल रहे हैं। तो आप सोचो कि यूके का कितना सुंदर भाग्य है जो दादी फिर से आ रही है। और आप सभी को 4 अगस्त का निमंत्रण है कि आप अवश्य पधारें, बाबा के घर में दादी से मिले, और सबके साथ यूके का परिवार इकट्ठा होता, संगठन इकट्ठा होता, तो वो भी एक बहुत खुशी की लहर होती। तो दादी क्यों आ रही है? दादी क्यों आ रही है? दर्शन करने कि कहां तक जो लेसन नए मास में दादी सिखा के गई, उसका कहां तक लेसन पक्का किया, दादी ने इस बारे दो लेसन बहुत पक्के कराए, साइलेंस। दादी ज्यादातर साइलेंस में ही इस बार रही, तो उस साइलेंस का कहां तक हमने फायदा उठाया और कहां तक हम खुद भी साइलेंस में रह करके आगे बढ़ रही हैं वो देखेंगे दादी। और दूसरा, मैं समझती हर समय दादी मिलती रही तो पांच उंगलियों की बात दादी कहती थी, हर उंगली अलग अलग, हर उंगली का कर्तव्य अलग, मोटा छोटा बड़ा, और साथ साथ हरे की विशेषता परंतु एक हाथ। जब एक भी उंगली मिसिंग होती तो कार्य मुश्किल होता। आप ट्राई करके देखो, चीज उठानी है, चीज बनानी है, चीज रखनी है, कुछ काम करना है, एक भी मिसिंग है तो मुश्किल। तो हर एक आत्मा की वैल्यू अपनी अपनी, विशेषता अपनी अपनी, परंतु जब संगठन होता तो उस संगठन की शक्ति से सारा कार्य सहज होता। तभी से पिछले सप्ताह बाबा ने परिवार कितना प्यारा है उसका महत्व सुनाया, आज परमात्म प्यार कितना जबरदस्त है वो सुनाया, परंतु पिछले सप्ताह परिवार का प्यार कितना विशेष है, हर आत्मा कितनी विशेष है, वो बात बाबा ने अंडरलाइन की। तो दादी ने भी ये पांच उंगलियों की बात बार बार याद कराया। तो दादी अभी ये भी देखेंगी कि हाँ, पुरुषार्थ तो चालू ही है, परंतु कहाँ तक उस बात में हम सफल रहे हैं कि और कोई बात न नजर आए, विशेषता नजर आए। जब विशेषता नजर आएंगी तो जो अपना सहयोग होगा सहज होगा। जब तक एक एक आत्मा की विशेषता का मालूम नहीं, तब तक जो सहयोग की शक्ति हो वो सहज नहीं हो पाती। एक अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, दो भी इकट्ठा होंगे तो फिर भी लिमिटेड होंगी। सबके सहयोग से पहाड़ उठता है। तो परिवार का प्यार, हर एक की विशेषता, दादी ये भी देखने के लिए आ रही है कि कहां तक मई मास के लेसन्स हमने अपने जीवन में धारण किए। नहीं तो इतना जल्दी और आ भी रही है बहुत कम दिनों के लिए, 29 तारीख को आना, 10 तारीख को जाना छुट्टी, फिर जर्मनी से ही दादी सीधा भारत जाएंगी। तो बहुत कम समय, तो उस कम समय में बस देखने से ही दादी को मालूम पता चलेगा जी। अभी कुछ सेलिब्रेशन भी है, परिवार का संगठन होता तो सेलिब्रेशन करना भी आवश्यक होता। तो मैं समझती हूँ उनकी तैयारी तो हो चुकी है, बाकी मुनी बहन को सभी जानते हैं। मुनी बहन आजकल कहाँ गई हुई है? न्यूयॉर्क। और सारा चक्कर लगाएंगी। कल उन्हों के साथ बातचीत हुई तो कहती है कि 20 साल के बाद मैं अमेरिका आई हूँ। क्योंकि जब पीस विलेज की ओपनिंग हुई थी उस समय गई थी, फिर उसके बाद तो दादी जी की तबीयत की बातें आई, फिर उसके बाद मोहिनी बहन की तबीयत की बातें आई, फिर अभी मुनी बहन वहां चक्कर पर गई है। बाकी तो सेवाएं तो सब तरफ बहुत फैली हुई है। अपने पास भी मधुबन निवासी करीब 15-17 लोग आ रहे हैं, तो आपके पास भी यहाँ भी चक्कर अवश्य ही लगाएंगे। मधुबन वाले जब मॉनसून सीजन शुरू होती तो वहां पर इतनी सेवाएं नहीं होती, तो फिर चांस लेकर के बाहर की सेवा पर निकलते। तो वो अभी जुलाई से 15 तारीख से आना शुरू होगा, ग्रुप ग्रुप आते रहेंगे, तो आपसे भी मिलेंगे।
दीदी ने जैसे कहा कि सेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस एज इज अबाउट सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग, तो बाबा ने अच्छा तो अभी हम अच्छा तो किसका सेलिब्रेशन है? अच्छा इट्स नॉट सीक्रेट, सीक्रेट नहीं है संगम युग में नथिंग इज सीक्रेट, है ना? तो आज हमारा विशेष जैसे जयंती मैंने भी याद किया बाबू भाई कैसे तो शुरू से ही बाबा ने निमित्त बनाया है, तो आज फिजिकली बापू की बर्थडे तो वैसे 2 जुलाई को, लेकिन बापू का बहुत स्ट्रांग संकल्प था कि जयंती बनाएंगी तो उसके साथ मनाएंगे, यू नो, और नॉट ओनली जयंती बन लेकिन हम सभी, है ना? तो कितने बड़े मैंने अच्छी अच्छी बात है ना सबको साथ मिला मनाना। तो बाबू भाई इज फिजिकली 85 साथ साथ हमारा अमृत भाई की भी 75 उसकी भी 75 की मनाएंगे। एंड वी हैव अ कुमार, एक कुमार भी है किशोर भाई 60 वंडरफुल। आई डोंट थिंक किशोर भाई ने कभी सोचा था कि 60 तक पहुंचेंगे, हैं किशोर भाई पहुंचा दिया बाबा ने, नहीं? तो तीनों भाइयों को बुलाएंगे और मुझे और ये भी मुझे ख्याल है कि ऑडियंस में कई ऐसे भी होंगे कि जिसकी बर्थडे जुलाई में है, राइट? कई है तो आपको वहां ही बैठे रहना परंतु इसके अंदर आप सभी की ऑटोमेटिकली सेलिब्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना? राइट, बाबा ने कहा सूक्ष्म में भी करना है ना। तो तीनों भाइयों को बुलाते हैं, बापू आओ, और खास हमारी तीन बहनें जी मनु बहन, हाँ राइट यस, उसके लिए भी अपनी जयंती बहन कहीं बाहर गए थे तो जब आए तो दीदी को भी मालूम नहीं था, इसको भी सरप्राइज मिला 50 ईयर्स ऑफ सेवा, अमेजिंग। नहीं तो उसके लिए भी जयंती बहन को बहुत बहुत और तीन बहनें भी, दीपिका बहन, इंदु बहन, और आपको मालूम है इंदु बहन की भी बर्थडे जुलाई में आती है इंदु बहन की भी, है ना? इंदु बहन कम ऑन, सुकंदी बहन, सीनो भाई और ट्रांसलेटिंग, आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर टू ट्रांसलेट, मे बी समबडी एल्स कैन टेक हर प्लेस, सकू बहन आप इंदु बहन की प्लेस ले सकते हैं। शांति। देखो दीदी का भी दिल कितना बड़ा है, जिसकी भी बर्थडे है जुलाई में, प्लीज क्यू अप कम। सपना का डैडी, सपना का डैडी, ओ यस यस यस, those whose birthday falls in July, please come forward. You'll get cake from Didi. Lucky, na? Lucky July. What's the birth sign?
Happy birthday to everyone who's celebrating. Many, many, many.